लाख उपाय करे दिन राती, मिले ना धीरज इस मन मद मत। कितने ही उपाय कर लीजिए लेकिन मन में धैर्य, मन में धीरज, मन में संतोष या मन में तृप्ति कभी आ ही नहीं सकती। जिस मन को कमजोर करने के लिए, जिस मन की सफाई करने के लिए, जिस मन के अंदर संकल्पों का बोझ कम करने के लिए ये मानव जन्म मिला था, हमने उल्टी राह पकड़ ली कि उन संकल्पों को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हम संसारी जीवन जी रहे हैं, उसमें सफलता देख रहे हैं, उसमें अपना विकास देख रहे हैं। जबकि सिद्धांत कुछ दूसरी बात कर रहा है, सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार, मंगत जब मन निश्चल भया आपे रूप करता। किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से यदि मन निश्चल हो जाए, उसके अंदर संकल्प का अपना बंद हो जाए, तब मेरी वही स्थिति है या वही स्थिति हो जाती है जो ईश्वर की स्थिति, शांति का सागर में हो जाता हूं। लेश मात्र भी कोई क्लेश नहीं रहता, पूर्ण तृप्त हो जाता। अब ये वाणी का निर्णय, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन विचार उठता है कि ये काम करेगा कौन? मैं जो संसार में सीखता हूं, परिवार में सीखता हूं, वो तो यही सीखता हूं कि बचपन से लेकर मृत्यु के बीच का जो भी स्पान हमको मिलता है लाइफ का, उसमें जितनी इच्छा मैं बढ़ा सकूं, उनको पूरी कर सकूं, उतनी मेरे जीवन की सफलता। तो सांसारिक निशा तो ये बैठा हुआ है। तो अब बताइए, यदि आपके अंदर गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास ही नहीं है, आप ये समझ ही नहीं रहे हैं उसके बिना मेरा जीवन बर्बाद है, तो उनकी बात आप क्यों मानोगे? केवल सत्संग सुन लेने से या कुछ पढ़ लेने से ये काम हो नहीं सकता। इसलिए ये पूरा विज्ञान है, बड़ी ही एक्यूरेट साइंस है। जितनी एक्यूरेट साइंस वो भी नहीं है जिन्होंने एटम की रिसर्च की, जिन्होंने बड़े बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है रिसर्च किए, एनर्जी इक्वेशन बनाई, वो भी इतनी एग्जैक्ट साइंस नहीं है जितनी कि ये साइंस। इसलिए इसका नाम है आत्मविज्ञान, आत्मविद्या। इसे मेरा कल्याण है, मेरे जीवन की सफलता है, मन की शांति, जिंदगी में चैन है। लेकिन कब? जब ये बात सही रूप में समझ में आए, तभी। इसलिए देखते होंगे आप, बड़े सत्संग सुने जाते हैं, बड़े सत्संग सुनाए जाते हैं, लेकिन समाज का यानी मनुष्य का धीरे धीरे पतन ही होता चला जाता। आप अपने बचपन से देख लीजिए और आज की आयु देख लीजिए, इस बीच में मनुष्य का पतन हुआ है या उत्थान हुआ है? यदि इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो कितना उत्थान हुआ है, कितनी पतली पतली सड़कें होती थी, कितनी चौड़ी चौड़ी हो गई, ऐसे साधारण से मकान होते थे, इतने शानदार मकान बन गए आज। क्या नॉर्मल एजुकेशन होती थी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करना बड़ा मुश्किल काम होता था उसमें, आज कितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां हो गई। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन तक नहीं हुआ करती थी, आज पूरी दुनिया हम हवाई जहाज में घूम लेते हैं, कितना विकास हो गया। तो विकास ये संसार का हुआ है या मन की बेचैनी का हुआ है, निर्णय तो ये करना है। मन की बेचैनी का विकास हुआ है यह आपको कौन सिखाएगा? वाणी इसी के लिए प्रकट होती है। संसार में गुरु अवतार रूप में इसीलिए आते हैं। जो ईश्वर अपने आप में निराकार है परंतु हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमारी शांति के लिए वो वाणी भी प्रकट करता है, अवतार भी ग्रहण करता है, बिना उसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं। और ये प्रक्रिया पे आज से नहीं चली है, आदि काल से चली आई। तो यदि हमने इसको नहीं सीखा, केवल ऊपर पर बात करते रहे, तो हमारी बीमारी का इलाज कैसे होगा? इसी वाणी कह रही है कि लाख उपाय करे दिन राती, मिले ना धीरज इस मन मद माती। मन के अंदर मद चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है, मन आपका नशे में। इसीलिए कितने भी उपाय कर लीजिए, मन का नशा और गहरा हो जाएगा, ये उतरेगा नहीं। रास्ता क्या है? वाणी रास्ता ही बता रही है। वाणी कह रही है करो उपाय राख चित जतन, करो उपाय राख चित जतन, मन को बांधे पाए प्रभ रतन। अब वो कह रही है वाणी की करो उपाय राख चित जतन। चित जतन का क्या मतलब है? चित कहते हैं चेतना। चित कहते हैं चेतना, चित जतन। और चेतना कहां है? आप तो यही कहोगे ना, जो निर्णय करता है उसमें चेतना। मन निर्णय नहीं करता, इसलिए मन में चेतना नहीं। बुद्धि निर्णय करती है, यानी मैं निर्णय करता हूं, मेरे अंदर चेतना, मैं जानता हूं। इसका उपाय कहां होगा? इसका उपाय करो उपाय राख चित्त जतन। चित्त में यत्न करना हो, अर्थात बुद्धि को ट्रेंड करना हो, इसीलिए महाराज जी की वाणी कह रही है कि सत बुद्धि धर बावरे। ऐ इंसान, बावरा कहते हैं बिगड़े हुए इंसान को, आगे पागल को, या जिसका निर्णय ठीक नहीं होता, उल्टे सीधे निर्णय करता रहता है, वो बावरा इंसान। इसके लिए वाणी कह रही है तू सत बुद्धि धारण कर, अर्थात जो विचार जो निर्णय सत के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रकट हुआ है, वाणी के रूप में, सत्पुरुषों के रूप में, या उनके वचनों के रूप में, वो सत विचार है। उसको मैंने यदि नहीं सीखा, उस विज्ञान को नहीं सीखा, तो क्या होगा? मैं संसार का विज्ञान सीखता रहूंगा और संसार में उसी प्रकार फंस के मरता रहूंगा, जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं यूक्रेन का हाल हो रहा है। दो देश उसमें दोनों तरफ चिपके हुए हैं, एक तरफ अमेरिका चिपका हुआ है, एक तरफ रशिया चिपका हुआ है। दोनों ही मिलकर उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है, नहीं मेरी बर्बादी का कारण क्या है, उसके इस बात का, इस बहस का पता नहीं, क्योंकि उसकी तरह संसारी बुद्धि। संसार में हमेशा यही होता है, इससे हटके कभी कुछ नहीं हुआ। भारत कितनी बार बर्बाद हुआ विचार कर, 200 वर्ष अंग्रेजों ने इसका खून चूसा, 800 वर्ष मुगलों ने इसका खून चूसा। क्या संस्कृति भारत की थी, कहां पहुंचा दिया इसे? जहां चार वेद प्रकट हुए हों, सैकड़ों सत्पुरुष प्रकट हुए, इसलिए इसको धर्म भूमि कहा जाता है, ऋषि भूमि कहा जाता है। यहीं पर ही राम पैदा हुए, यहीं पर ही कृष्ण पैदा हुए, यहीं पर ही नानक पैदा हुए, यहीं पर ही कबीर पैदा हुए, कितने ऋषि आज के युग में भी महाराज के रूप में पैदा हो रहे हैं। मैं श्री रमण राम को शुक्र हमस, पूरी दुनिया में कहीं है ऐसा? महाराज खुद भी कहते थे प्रेमी, इस धरती की शिफ्ट ऐसी है, इस धरती का गोल ऐसा है, यहां कोई ना कोई लाल पैदा होता ही रहता है। लेकिन ऐसी भूमि भी 1000 वर्ष तक गुलाम रही। इसका मतलब है यहां रावण भी तो पैदा हुआ, या हिरण्यकश्यप जैसा पिता भी तो पैदा हुआ। तो संसार का स्वरूप हमेशा से ही ऐसा है। ये स्वरूप कहां है? ये सारा का सारा स्वरूप मेरे मन के अंतर्गत है। सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। मंगत जब मन निश्चल भया आपे रूप करता। जब ये मन निश्चल हो जाता है अर्थात ईश्वर ध्यान में लीन होता है, यही कहिए कि बुद्धि के बल से, बुद्धि जब ईश्वर के साथ एक होती है तो बुद्धि की क्या स्थिति होती है? बुद्धि चेतन है, लेकिन साथ में उसका निर्णय भी है। हमारे पास क्या बुद्धि नहीं है? हम सबके पास बुद्धि है, लेकिन निर्णय क्या है आपके? जो इंद्रिया और मन का व्यापार है वही आपके निर्णय है। इसका मतलब मनुष्य, ईश्वर ने जब आपको बना दिया, उसने मनुष्य इसलिए बनाया था कि आप अपनी बुद्धि को सतबुद्धि बनाओगे। आपने अपनी बुद्धि को सांसारिक बुद्धि बना दिया। तो यदि हमने वाणी नहीं पढ़ी, सिर्फ उसकी बात को ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करी, तो गहरे पतन की ओर बढ़ने के पश्चात भी हम अपने ऊपर एडजेक्टिव ये लगा लेते हैं कि मैंने बड़ा विकास किया, बच्चों का बड़ा अच्छा पालन किया है मैंने, उनका भविष्य बड़ा संभाला है। ये अहंकार हम पाल लेते हैं और जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसकी वाणी आपको डायरेक्शन दे रही है कि हर वर्ड कितना कीमती होता है, कितना ध्यान देने योग्य होता है। वाणी कह रही है कि करो उपाय राख चित जतन, मन को बांधे पावे प्रभ रतन। उपाय क्या हुआ फिर? उपाय उसका चित्त में है, अर्थात जिस बुद्धि में चेतना है, जिस बुद्धि में निर्णय है, वहां यत्न करना है। इस यत्न का राज वहां छिपा हुआ है। और ये वाणी क्यों प्रकट हुई है, सब कुछ क्यों प्रकट हुआ है? ये बुद्धि के लिए ही हुए हैं, ये मन के लिए नहीं हुए। क्योंकि मेरे अंदर ये निश्चय बैठा हुआ है कि निर्णय मेरा है। और अपने निर्णय के अनुसार मैं अपने आप को भी बदल सकता हूं, अपने परिवार को भी बदल सकता हूं, समाज को भी बदल सकता हूं। इसका मतलब जब मैं कहता हूं ये मैं कौन है, ये बुद्धि ही है जिसको मैं कहा जा रहा है। क्योंकि बुद्धि में निर्णय भी है और बुद्धि में चेतना भी है। निर्णय मेरा है, चेतना ईश्वर की। इसीलिए बुद्धि में आकर जीव और ईश्वर एक हो जाते। बुद्धि वो प्लेटफॉर्म है जहां जीव और ईश्वर का मिलन हो रहा है। ईश्वर तो मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं है, चेतना के रूप में हर वक्त मेरे साथ है। लेकिन मुझे ईश्वर का होश कब आएगा? जब बुद्धि सत विचार से युक्त हो। सत विचार धारण करने के लिए, सत निर्णय धारण करने के लिए बुद्धि संसार में कोशिश करेगी, इस देह के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा। तो मन, देह, इंद्रियां ये बुद्धि के उपयोग के लिए है। किस उपयोग के लिए? कि बुद्धि जो ईश्वर के संग ही है, उस ईश्वर के संग को वो बुद्धि अनुभव कर सके। ईश्वर मेरे संग है लेकिन मुझको उसका अनुभव नहीं, ये कैसी अजीब अजीब सी बात। मेरे अंदर चेतना है, मैं जानता हूं, मैं जानने का मतलब ही चेतना हूं, लेकिन इस चीज चेतना के विज्ञान को मैं कुछ भी नहीं जानता। चेतना की जगह मैं क्या जानता हूं? मैं देह हूं। बुद्धि जो चैतन्य है वो जड़ हो गई, देह तो जड़ है, देह में तो चैतन्य तो है ना। तो अपने मन के संकल्प और मन की डिजायर को पूरी करने के लिए मैं देह का प्रयोग करता हूं, देह का उपयोग करता हूं, देह को इस्तेमाल करता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा बड़ी प्रबल है, तो आप यहां तक निर्णय कर लेते हो कि जब मेरी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती तो इस देह को रखने का फायदा क्या। आप जहर खा लेते हो, सुसाइड कर लेते हो, देह को नष्ट कर देते हो। कभी भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते इस देह को मैं नष्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इच्छा पूर्ति के लिए। अब इच्छा ठीक है या गलत है, मेरा पतन करेगी या मेरा उत्थान करेगी, ये कौन निर्णय करेगा, ये कौन निर्णय करेगा। आप कहोगे मैं करूंगा। तो अब जो ये मैं कह रहा है इसी का नाम बुद्धि, क्योंकि इसमें चेतना भी है और निर्णय भी है। तो निर्णय को दुरुस्त करने के लिए ये शास्त्र प्रकट होते हैं, निर्णय को दुरुस्त करने के लिए अवतार धरती पर आते हैं, निर्णय को दुरुस्त करने के लिए ये वाणी प्रकट होती है। और अभी भी यही संदेश दे रही है वाणी, यदि ध्यान से पढ़ा जाए, ध्यान से समझने की कोशिश की जाए। शब्द बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन जब उसका विवेचन करो, उसका मनन करो, तो ये कितने गहरे अर्थ होते हैं ये इस वाणी से भी पता लगता है। कहते करो उपाय राख चित जतन, मन को बांधे पाए प्रभु रतन। प्रभु रूपी रत्न जिसको पाकर तो हमेशा के लिए धन्य हो जाता है, एक भी डिजायर के बंधन में तू नहीं रहता। वो ऐसा रत्न है उसको पाकर तू तृप्त हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है, जिस प्रकार महाराज जी तृप्त हुए, गहरी समाधि में चले जाते हैं। ना देह का होश है, ना संसार का होश है, ना उस समय प्रेमियों का होश है, लेकिन उस हालत से जब वापस आते हैं तो उनकी आंखें, उनकी वाणी बताती है ये बात कि किस आनंद के सागर से ये वापस लौट गए। और यदि इंद्रियों की बात करें, कभी भगत जी जब महाराज जी को कटोरी में दूध लौटकर लोटे से पिलाते थे तो महाराज उसको दूध को ऐसे पीते थे जैसे कोई कड़वी चीज पी रहे। इंद्रियां उसका टेस्ट ही नहीं ले रही हैं, मन उसमें लगा ही नहीं। मन और इंद्रियों के लिए दूध एक बोझ है, लेकिन पिया क्यों जा रहा है, शरीर की खुराक, शरीर जिंदा रखने के लिए भोजन जरूरी है, इसलिए किया जाता है। लेकिन रुचि वहां कोई भी नहीं, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद उस चेतन सत्ता, उस आत्मसत्ता या जो कहें उस ब्रह्म रूप परमेश्वर में है, जो इस देह के अंदर हर सेल में मौजूद है, देह के अंदर हर जगह मौजूद है। और या यूं कहें कि देह खुद आनंद का साथ है, पूर्ण देह। इसकी जो इसके रंग वो बड़ी पतली सी, जब पूर्ण देह प्रभु के अधीन हो जाती है उस अनुभव की स्थिति में, ये स्किन की मोटाई भी नहीं बचती, ये पूर्ण रूप से ईश्वर रूप ही हो जाता है। और उसके साथ फिर सारा संसार जो देह के बाहर है ये भी ईश्वर रूप है। श्री माई कह रहे प्रेमी, देह करके संसार है, संसार अपने आप में कोई चीज नहीं। तो ठीक ही कह रही है, सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। इसका विचार अंतर्गत होता है, उस विचार के अनुसार जब अनुभव होता है तब ये वाणी आपको खुद ही पता लग जाती है, ये केवल सत्य बोल रही है, यहां तो दूसरी चीज है ही नहीं। तो कितने बड़े झूठ पर मैं मानव जन्म लेकर भरोसा कर रहा हूं, और इतना कीमती जन्म उसके लिए बर्बाद भी कर रहा हूं, मुझे होश ही नहीं, और बर्बाद करके इसका अहंकार भी कर रहा हूं, मैंने कितना विकास किया, लोग मुझको जाने, मेरी शक्ल देखें, मेरी तारीफ करें। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। विचार से देखो हम कितने अज्ञानी हैं, फिर भी इतना अहंकार। इसीलिए ज्ञान कुछ और कह रहा है और मेरी सांसारिक बुद्धि कुछ और कह रही है। तो मनुष्य जन्म जब मिला है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सांसारिक बुद्धि को धीरे धीरे सत विचारों में घिसकर इसको साफ सुथरा करूं, मणि की तरह से चिकना करूं, ताकि संसार का मैल इसमें रुके ही ना, केवल प्रभु का प्यार इसमें ठहरे, प्रभु का दर्शन इसमें ठहरे और प्रभु की इच्छा इसमें ठहरे। तो सब कुछ मेरे देह के अंदर मौजूद है, इसलिए मानव देह सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं इसकी कीमत वसूल नहीं कर रहा हूं, इसको बर्बाद कर रहा हूं। जितना भी आप सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हो और एक दूसरे से तुलना कर रहे हो, सारी की सारी मानव जन्म की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यदि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो। इसीलिए जिस इंसान ने भी इस देह को अपना स्वरूप समझकर और इंद्रियों के सुख को अपना लक्ष्य समझकर जो कुछ भी पढ़ाई की है, जो कुछ भी कर्म किए हैं, जो कुछ भी जीवन जिया है, वो वास्तव में ईश्वर की निगाह में, गुरु की निगाह में मानव जन्म की केवल बर्बादी। मैंने दुरुपयोग किया है मानव जन्म का, इसीलिए सजा उसको क्या मिलती है कि मानव जन्म मुझसे छीन लिया है। जिस कर्म के लिए मानव देह ईश्वर हमको देता है, तो कर्म किया ही नहीं तो कैसे अधिकारी बन जाएंगे। याद रखिए, कोशिश तो मैंने सतमार्ग की करनी थी, कोशिश मैं भोग मार्ग की कर रहा हूं, योग मार्ग की। आगे वो कह रहे हैं, मन में घाले जो साची घाल, सो ही पर से पद दीन दया। अब देखिए, मन में घाले जो साची घाल, मन में जो कल्पनाएं बनाता है, मन में जो संकल्प बनाता है, मन में जो इच्छाएं बनाता है, कौन सी होना चाहिए? उस सत्य बोध की इच्छा होना चाहिए, साची भाव, साची कोशिश, साचा पुरुषार्थ। यदि आपने उस मार्ग की कोशिश की होती, उस मार्ग के रहस्य को सीखा होता सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो फिर आपके मन में एक इच्छा होती, मैं एक घंटा समय करता हूं, इसी तरह से संसार के काम को छोटा करता हूं, मैं दो घंटे क्यों नहीं करता। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती, जैसा गुरु का मार्गदर्शन है, आपके सिमरन के प्रति इच्छा, सिमरन की आवश्यकता के प्रति आपकी बुद्धि का निर्णय वो बदलता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती, आप ईश्वर के लिए जीते, संसार का केवल काम चलाते। यदि परिवार के लिए सोचना जरूरी था तो आप यही सोचते, इनका काम कैसे चल सकता। मैं शौक बढ़ाता हूं, शौकों को डेवलप करता हूं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, उसको फिर विकास करके उन्नति करके देखता हूं, उससे फिर लोगों से कंपटीशन करता हूं, तो साची घाल या साची कोशिश कहां हो रही है? तो पतन वाली कोशिश कर रहे हो आप, योजना बना के पतन वाली कोशिश कर रहे हो। यदि आपने सच्ची कोशिश की होती, मन के अंदर वो डिजायर पाली होती जो ईश्वर प्राप्ति की डिजायर है, तो कहते हैं सो ही पर से पद दीन, आपको दीनदयाल का पद या दीनदयाल की स्थिति या दीनदयाल का दर्शन या अनुभव आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस जन्म में यदि वो काम नहीं भी होता तो अगला जन्म ये सारे संस्कार आपको तैयार मिलते। अब बताइए, यदि संस्कार ये तैयार मिलते बचपन से ही, तो आपका स्वभाव कैसा होता? घर वाले भी चाहे कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आप ईश्वर को नहीं छोड़ते। जैसे महाराज जी ने बचपन से ईश्वर को नहीं छोड़ा, 3 वर्ष की आयु से वो अपने साधना में यही कही अपने अंदर की स्थिति में लीन रहते थे, 4 पाई पे बैठ कर। माँ कितना भी कहता रहे, बहाना बढ़ा देते, यहां सो जा रहा हूं, नींद आ रही है। ये संस्कार मैंने इस जन्म में बनाने होते हैं ताकि अगले जन्म में बचपन से ही मेरी दुर्दशा ना हो, मैं अपने पैरों पर बचपन से ही खड़ा हूं। पैरों पर खड़ा होने का मतलब मेरे अंदर बुद्धि के जो संकल्प है, बुद्धि के जो निश्चय है, वो परिपक्व हो, ईश्वर वाले हो, ताकि मानव जन्म जो कुछ ही मैंने इस जन्म में बर्बाद किया भी थोड़ा बहुत, अगले जन्म में मेरा एक घंटा भी बर्बाद ना हो। तो ऐसी कोशिश जो करता है, कहते हैं उसको दीनदयाल का पद या दीनदयाल का अनुभव मिल ही जाता है। याद रखिए कि संसार में दो ही रास्ते हैं, दो ही चीजें हैं, साची भगत प्रभु चरण की, नित उठ बुनी विचार मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। ये निर्णय है, वाणी का निर्णय है ईश्वर का। साची भगत प्रभु चरण की, नित उठ बुनी विचार मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। इस संसार में कोई भी सुखी, कोई भी तृप्त हो ही नहीं सकता, ये लिखित गारंटी या लिखित निर्णय वाणी दे रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसलिए इस भूल में ना जिए कि जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके बड़े अच्छे मकान बने हुए हैं, जिनकी बड़ी अच्छी पोस्ट है या बिजनेस है, बड़े सुखी इंसान है, इस भ्रम में ना रहे। दुखिया कुल संसार वाणी की इस बात को याद रखें और प्रभु मार्ग ओम।